Blessed Savior, Om Namah Siddhavya, Om Namah Siddhavya, Om Shuddhatmane Namah, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajhayanam, Namo Loe Savasahunam, Natchaviyantakamam, Niram Namyunam Savacham, Anubhagasavihatim, Jehovah Samparu Vemo. यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा इतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। ये जो पांचवी पुस्तक है अनुभाग विभक्ति नाम की, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 59 पर आ गए। 59 यहाँ अभी आज नया अधिकार चालू होता है, परिमाणानुगम। इसका नंबर अभी कितना है? 17 नंबर है ना, क्योंकि भंग विच्छेद देखा हमने, फिर भागा भाग देखा 16 नंबर का, और यहाँ 17 नंबर को देख रहे हैं। परिमाणानुगम दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। प्रकृत में, प्रकृत में यानी हाल में, विद्यमान में, सांप्रत में, उत्कृष्ट से प्रयोजन है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ की अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीव कितने हैं तो असंख्यात है। पहले हमने भागा भाग में अनंत वे भाग प्रमाण कहा था, परंतु अनंत वे भाग है, उसका प्रमाण कितना है तो कहते हैं असंख्यात है। ये जो असंख्यात जब बताते हैं तो ये उत्कृष्ट संख्या बताई जाती है, क्योंकि हमने भंगों में देखा था ऐसा होता है, कभी एक भी जीव नहीं है, हो सकता है कभी एक जीव है और कभी अनेक है, तो अनेक अधिक से अधिक कितने हो सकते तो असंख्यात है। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीव द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? अनंत है। इसी प्रकार ये जो असंख्यात और अनंत वाला जो प्रपोर्शन है, ये प्रमाण है, वो कहाँ कहाँ हो सकता है, कौन कौन सी मार्गणाओं में। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंच तथा सब एकेंद्रिय, सब वनस्पति कायिक, सब निगोदिया कायोगी, औदारिक कायोगी, औदारिक मिश्र कायोगी, कार्मण कायोगी, नपुसक वेदी, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, असंयत, अचक्षु दर्शन वाले, कृष्ण लेशा करना लेशला हुआ लेशा वाले, नील लेशा वाले, कपोत लेशा वाले, भव्य अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी, आहारक और अनाहारकों में जानना चाहिए। यह असंख्यात और अनंत वाला जो प्रमाण है वो इन सभी मार्गणाओं में घटित होगा। आप कहेंगे एकेंद्रिय में कैसा होगा, तो संगी में से जो उत्कृष्ट अनुभाग के साथ एकेंद्रिय में आता है तो वहां भी उत्कृष्ट अनुभाग वाले असंख्यात जीव पाए जाएंगे। अब आदेश की अपेक्षा नारकियों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीव द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? असंख्यात है। उत्कृष्ट भी असंख्यात है, अनुत्कृष्ट भी असंख्यात है, फिर भी सभी जीवों के उत्कृष्ट का प्रमाण असंख्यातवा भाग है और वो असंख्यात बहुभाग है। इसी प्रकार ये जो दोनों ही असंख्यात है कहा, ये बात कहाँ कहाँ घटित होती है? इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, ऊपर सामान्य तिर्यंच लिया था जहाँ अनंत घटित होते हैं, यहाँ सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त, मनुष्य में सामान्य मनुष्य लेना, मनुष्य अपर्याप्त लिए हैं, क्योंकि पर्याप्तों की संख्या संख्या थे, उनको यहाँ नहीं लिया। सामान्य देव, भवनवासी से लेकर अपराजित तक के देव, सबको इकट्ठा नहीं लेना, हर एक अपना अपना, वो भी असंख्यात असंख्यात प्रमाण है उनका। और जो अपराजित आदि में जो लिखा है उत्कृष्ट वगैरह, उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट लेना। सब विकलेंद्रिय, सब पंचेंद्रिय, सब पृथ्वी कायिक, सब जल कायिक, सब तेजस कायिक, सब वायु कायिक, बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, सब त्रस कायिक, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, वैक्रेक काय योगी, वैक्रेक मिश्र काय योगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंग ज्ञानी, आभिनिबोधिक ज्ञानी। देखो, मति अज्ञानी में अनंत वाले लिए थे, अब विभंग ज्ञानी होते ही असंख्यात है, उसमें उत्कृष्ट वाले वो भी असंख्यात हो गए, अनुत्कृष्ट वाले भी असंख्यात हो गए। आभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, संयता संयत, संयतों को नहीं लिया, वो सब संख्यात होंगे। चक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले, पीत लेशा वाले, पद्म लेशा वाले, शुक्ल लेशा वाले, सम्यक दृष्टि, वेदक, वेदक हुआ, वेदक सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि, सासादन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि और संगी जीवों में जानना चाहिए। ये दोनों ही असंख्यात का प्रमाण इन सब में घटित होता है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीव कितने हैं तो संख्यात है, उसमें उत्कृष्ट है वो संख्यात वे भाग हो गए और बाकी संख्यात बहुभाग हो गए। फिर भी प्रमाण कितना है, दोनों का संख्यात है। इसी प्रकार ये संख्यात और कहां कहां घटित होगा, सर्वार सिद्धि के देव आहारक का योगी, आहारक मिश्र का योगी, अपगत वेदी, कषाय रहित, मन परे ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्राय संयत और यथाख्यात संयत जीवों में जानना चाहिए। इन सभी मार्गणाओं में संख्यात ही जीव पाए जाते हैं। विशेषार्थ, पहले अनुयोग द्वार में यह बतलाया है कि पहले यानी भागा भाग में ओघ और आदेश से अमुक अनुभाग वाले जीव समस्त जीवों के कितने भाग प्रमाण हैं, और इस अनुयोग द्वार में उनका परिमाण बतलाया है। ओघ से मोहनीय कर्म के अनुभाग से युक्त जीव राशि अनंत है, किंतु उसमें उत्कृष्ट अनुभाग वाले जीव केवल असंख्यात ही है। क्योंकि एक तो मोहनीय का उत्कृष्ट अनुभाग बंध संगी पंचेंद्रिय जीव करते हैं, दूसरे अन्य इंद्रिय वालों में मोहनीय का उत्कृष्ट अनुभाग उन्हीं के पाया जाता है जो संगी पंचेंद्रिय इसका घात नहीं करके उनमें उत्पन्न होते हैं। हमने देखा अंतर्मूर्त में घात होता है तो उसके पहले ही एक इंद्रियों में जाएंगे, इसलिए इनका प्रमाण असंख्यात कहा। शेष सब मोहनीय की सत्ता वालों के अनुत्कृष्ट अनुभाग होता है, अतः उनका प्रमाण अनंत कहा। सामान्य तिर्यंच से लेकर अनाहर पर्यंत जिन मार्गणाओं में जीव राशि का प्रमाण अनंत है, उनमें ओघ की तरह ही परिमाण होता है, यानी प्रमाण होता है। नरक गति से लेकर संगी पर्यंत असंख्यात राशि वाली मार्गणाओं में, ये सारी असंख्यात राशि वाली मार्गणा, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों ही विभक्ति वाले जीव असंख्यात होते हैं। मनुष्य पर्याप्त से लेकर यथाख्यात संयत पर्यंत संख्यात राशि वाली मार्गणाओं में दोनों विभक्ति वालों का परिमाण संख्यात ही होता है, किंतु उनमें भी एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट अनुभाग वाले जीव होते हैं और बहुभाग प्रमाण अनुत्कृष्ट अनुभाग वाले जीव होते हैं, जैसा कि भागाभाग अनुयोग द्वार में बतलाया आया है। ये तो आसान है समझने में। इस प्रकार उत्कृष्ट अनुभाग परिमाणानुगम समाप्त हुआ। प्रकृत में जघन्य से प्रयोजन है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। हमने भागाभाग में क्या देखा था, जघन्य वाले कितने हैं? अनंत वे भाग। अब ये अनंत वे भाग, उत्कृष्ट भी अनंत वे भाग थे, जघन्य भी अनंत वे भाग है। तो उत्कृष्ट की संख्या हमने असंख्यात देखी, परंतु जघन्य की कितनी होगी? संख्यात। क्यों? दसवें गुणस्थान के अंत में कितने जीव हो गए एट ए टाइम, तो संख्यात ही हो गए। देखो तो ओग की अपेक्षा मोहनीय कर्म के जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले जीव कितने हैं? संख्यात है। द्रव्य प्रमाण से अजघन्य अनुभाग वाले विभक्ति वाले जीव कितने हैं? तो अनंत है। उनको छोड़कर बाकी सभी जीव अजघन्य वाले हो जाएंगे। इसी प्रकार अब ये जहां जहां घटित होता है, दसवां गुणस्थान कहां कहां घटित होता है, उनमें ये बात ओघ की अपेक्षा से घटित होगी। इसी प्रकार काय योगी, औदारिक काय योगी, नपुसक वेदी, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी और चक्षु दर्शन वाले भव्य और आहार को में जानना चाहिए। जहां ये दसवां गुणस्थान होता है और जहां सभी जीवों की संख्या अनंत है, ऐसा लेना। नपुसक वेदियों को लिया, स्त्री वेदी पुरुष वेदी को क्यों नहीं लिया? उसमें भी तो दसवां गुणस्थान होता है ना? उनकी संख्या असंख्यात है। क्यों?
तो संगी पंचेंद्रिय होते हैं।
हाँ, तो मात्र पंचेंद्रियों में, संगी असंगी दोनों में, तो उनकी संख्या असंख्यात है, इसलिए वो अनंत वाली बात वहां घटित नहीं होगी। काय योगी को लिया, मनोयोगी वचन योगी को नहीं लिया, क्योंकि वे भी असंख्यात ही होते हैं। और चक्षु दर्शन वालों को लिया, चक्षु दर्शन वालों को नहीं लिया। ये मार्गणा क्यों ली, इसका कारण हमें पता होना चाहिए और हम डिराइव कर सकते हैं।
तिर्यंच को भी नहीं लिया।
हाँ,
तिर्यंच को भी नहीं लिया।
तिर्यंच को क्यों नहीं लिया?
वो तो दसवां गुणस्थान होता ही नहीं है।
दसवां नहीं होता, परंतु तिर्यंच का अपना जघन्य होगा कि नहीं होगा?
ये ओघ की अपेक्षा बात चल रही है।
ओघ की अपेक्षा जो कथन है, कौन सा कथन?
अच्छा, वो असंख्यात होगा,
ये संख्यात लिखा है ना। और तिर्यंचों में जघन्य हो किसके होता है?
अच्छा, वो तो
एक इंद्रियों को। वो जीव कितने हैं?
अनंत है।
वो अनंत है, इसलिए ये कथन वहां घटित नहीं होगा। भागा भाग में तो उनके जैसा हमने देखा था, अनंत विभाग वगैरह जहां कुछ मार्गणाव बनता है वहां पर, परंतु यहाँ एक्चुअल संख्या बता रहे हैं, प्रमाण कितना है, तो जघन्य वाले संख्यात ही है, तो ऐसा वहां घटित नहीं होगा। अब आदेश की अपेक्षा नारकियों में, नारकियों में जघन्य किसके होता है? असंगी में से आए हुए। हाँ, जघन्य और अजघन्य अनुभाग विभक्ति वाले जीव कितने हैं? असंख्यात है। देखो, वो असंगी में से भी असंख्यात जीव नरक में जा रहे हैं, है ना? ये मैक्सिमम पॉसिबल संख्या बताते हैं। कभी ऐसा हो सकता है एक भी जीव न जाए किसी विशिष्ट समय के लिए। इसी प्रकार सब नारकी, अब सभी नारकियों में लिया, नीचे के नारकियों में भी ऐसा लिया। क्यों? हाँ, वो भी कम है, दोनों है तो असंख्यात, फिर भी वो कम है। भागा भाग में हमने असंख्यात विभाग देखा था। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, मनुष्य अपर्याप्त, यहाँ सामान्य मनुष्य को छोड़ दिया। सामान्य मनुष्य कहते
नहीं,
तो जघन्य तो दसवां गुणस्थान में पाया जाता है। अब मनुष्य अपर्याप्त में जघन्य किसके होगा? सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त में से जो मनुष्य में आया है जघन्य के साथ, उसके होगा। तो जघन्य की संख्या असंख्यात है, और बाकी जो है असंख्यात बहुभाग वाले वो भी असंख्यात है। सामान्य देव, भवनवासी से लेकर अपराजित नामक अनुत्तर तक के देव, ये दोनों ही असंख्यात है। ये जो कथन है ना, सामान्य देवों में तो असंगी में से आए हुए हम देख सकते हैं, भवनवासी व्यंतर में भी असंगी में से आए हुए उन्हीं को जघन्य होगा, और बाकी जो अपराजित तक के जो देव लिखे हैं उनमें जघन्य कौन से होगा? दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरे हैं, फिर क्षपणा की है और इसमें उत्पन्न हुए हैं, तो वो भी जीव असंख्यात है। हो कौन से? क्षायिक समय दृष्टि, जो दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के पहले उतरे हैं फिर क्षायिक किया है, ऐसे असंख्यात जीव है वहां पर प्रत्येक स्वर्ग में, क्योंकि हर एक की अलग, सबको टोटल असंख्यात है वो नहीं बात हो रही है, वो जघन्य वाले भी असंख्यात है और अजघन्य वाले तो उससे भी असंख्यात गुणे असंख्यात है। कितने चढ़ के उतर गए? क्षायिक भी किया है ना उन्होंने, तो क्षायिक तो 6 महीने में 608 ही जीव करेंगे,
संचय की अपेक्षा,
तो संचय की अपेक्षा, हाँ तो क्या हुआ? असंख्यात जीव बताए ना, जगन्य वाले असंख्यात है, उसका अर्थ ही क्या है? इतने जीवों ने उपशम श्रेणी दो बार चढ़ के फिर क्षायिक प्राप्त किया है और अब जाके वहां देवों में है विराजमान। अरे अनंत जीव तो कितने एकेंद्रियों में पड़े हैं जिन्होंने उपशम श्रेणी चढ़ के उतरी थी पहले, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल जिनका चल रहा है, सम्यक तो प्राप्त किए हुआ समझो,
सादी मिथ्या दृष्टि,
सादी मिथ्या दृष्टि जिन्होंने उद्वेलना पूरी की है और जिनका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल चल रहा है। हमने पहले देखा था उस वो जीवों को अगर हम देखेंगे, क्योंकि किसी किसी के अभी सम्यक तो में से छूटकर अभी उद्वेलना पूरी हुई और कोई बहुत पहले अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल चल रहा है जो अनंत काल है। ये सभी असंख्यात है। हाँ, तो ज्योतिषी में जघन्य याद है, वहां पर जाके जो सम्यक तो प्राप्त करते हैं और अनंतानुबंधी की विषय योजना करते हैं, वो भी असंख्यात है। यहाँ लिया ना सब भवनवासी से, वो भी आ गए उसमें, परंतु उनमें जघन्य कौन है? वहां जाके जो अनंत सम्यक तो प्राप्त करके अनंतानुबंधी की विषय योजना करते हैं, ऐसे जीव भी असंख्यात है।
ये 32 सागर टोटल उत्कृष्ट स्थिति के हिसाब से 32 सागर डिवाइडेड बाय 6 महीना मल्टीप्लाइड बाय 608 वो भी असंख्यात हो जाएंगे।
असंख्यात हो गए ही
नहीं, पर वो तो हर एक जगह एक सागर में भी असंख्यात है, दो सागर,
क्योंकि
भी
सागर का प्रमाण कितना बड़ा है। अरे पल्ले का प्रमाण ही असंख्यात है, पल्ले के अनंत असंख्यात वे भाग में असंख्यात अबज वर्ष होते, गिनो भी वर्ष में 1200, एक साल में 1200 गिने, 6 महीने के अंतर से देखा ना हमने। असंख्यात का भी प्रमाण बढ़, हमने मिनिमम असंख्यात देखा था वो अनवस्था कुंड आदि करके
नहीं, वो तो समझ में आता है, पर ये एक साल में खाली 1200 जीव होते हैं, वो अपेक्षा कितने असंख्यात जीव क्षायिक समय दृष्टि है सभी जगह।
सभी जगह हमने देखा था तिर्यंश में क्षायिक समय दृष्टि असंख्यात है।
हाँ।
तिर्यंश तो भोगभूमि में हो गए है ना। हाँ। फिर
पीछे पहले स्वर्ग से
सभी स्वर्गों में देखा भी हमने।
हाँ। और पहले
पहले नरक में भी असंख्यात है, मनुष्य ही क्षायिक है वो संख्यात है, भोग भूमि वाले भी संख्या थी, संचय की अपेक्षा भी संख्या थी कहेंगे। असंख्यात कैसे हो गया? टोटल मनुष्य ही संख्या थे। तीर्थ इनका कहते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले भी जीव असंख्यात है, वो क्योंकि इतने सागरों की आयु के साथ पड़े हैं वहां पर। अभी यहाँ 170 जगह आ सकते हैं, है ना? फिर भी वो प्रकृति बांध रहे हैं अभी। भोग में कोई नहीं बांध रहा है, बांधने वाले कहाँ है?
कर्मों,
स्वधर्म से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में और पहले नरक में, और मनुष्य जो कोई है गिने चुने, ये वही मरकर वहां जाएंगे तभी बांधेंगे वहां पर। शुरुआत तो मनुष्य में होती है। अच्छा पहला नरक, हाँ अर्थी जगह हो जाए।
नहीं तो क्या बताया आपने?
वो ऐसा कहते हैं, उनका फास्ट है सब सारा कैलकुलेशन। एक नरक, अभी स्वर्गों को गिनो आप, 16 स्वर्ग हुए, फिर 9 ग्रेवेक हुए, 16 9 25, फिर 9 अनुदिश, 25 9 34, एक सर्वार सिद्धि और बाकी जो 5 कितने हुए, और मनुष्य एक, हाँ बहुनत्री को छोड़ दिया। हाँ नरकों के लेयर काउंट किए थे और ज्यादा हो जाए, फिर भी स्वर्गों को भी लेयर काउंट करने पड़ेंगे। माइनस नहीं, 16 तो 16 ही गिनना है, स्वधर्म से लेकर 16 9 5 9 और 9 9 9 और 5 9 9 8 5 23 23 और 16 39 और एक मनुष्य 40 हो जाएंगे। हाँ आपने 16 में से उनको माइनस किया। हाँ हाँ उनको गिना ही नहीं था हमने।
तीन नरक है ना, तीसरे नरक थे ना तीर्थंकर
प्रकरण। ओह तीसरे नरक तक ले लो, शाइक को लेना है तो हम पहला नरक। हाँ तीसरे नरक तक के जीव तीर्थंकर प्रकृति को बांध रहे हैं। चालू मनुष्य में किया था, मरण के समय में मिथ्यात्व में गए हैं, 42 हो गए अभी। हाँ हाँ इतने जगह तीर्थ, हाँ और उसमें नंबर हमने ज्वाइन होना चाहते हैं सब लोग, कम नंबर लगेगा क्यों?
नहीं नहीं नंबर नहीं लगाना है,
नहीं लगाना अच्छी बात है, अच्छा है ना। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं नंबर जो लगाना चाहते हैं उनकी बात चल रही है। हाँ हमारे में से कोई नहीं चाहता है। ये तो सहज ऐसे परिणाम होते, चाहने से कोई नहीं होता है, नहीं चाहते उन्हीं के पीछे लगता है ना। हाँ देखो हम आदेश की अपेक्षा देख रहे हैं। इसी प्रकार कौन से कि दोनों असंख्यात है, ये जो अभी हमने देखा था, इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव, भवनवासी से लेकर अपराजित नामक अनुत्तर तक के देव, हरेक अपना अपना जो नाम लिया है, स्वधर्म है, ईशान, सब एक एक में असंख्यात असंख्यात हो गए, सब विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, पहले सब पंचेंद्रिय तिरंच ले ही लिए थे है ना, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, सब पृथ्वी कायिक, सब अपकायिक, ये मनुष्यों को केवल छोड़ा है पर्याप्तों को, सब तेजस कायिक, सब वायु कायिक, बादर वनस्पति कायिक, प्रत्येक शरीर तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, सभी अन्य कायिक लिए हैं, वनस्पति कायिक में से बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर वाले लिए, निगोद को छोड़ा है, त्रस अपर्याप्त, वैक्रिय कायोगी, वैक्रेक मिश्र कायोगी, विभंग ज्ञानी, ये जब हम पढ़ रहे तब याद करना इनमें सूक्ष्म जघन्य कब होता है, विभंग ज्ञानी में जघन्य कब होता है याद है? बोलो लक्ष्मी,
जो दो बार श्रेणी चढ़ के उतरा है और
नवे ग्रह में गया है, वहां मिथ्यात्व में गया अंत में। हाँ तो ये विभंग ज्ञानी, तेजो लेशा वाले, वो अंत में इसलिए घटित किया था कि एक काल में एक समय घटित करना है। अगर शुरू में भी लाते हैं ना तो वही की बात है, क्योंकि अनुभाग तो घटेगा नहीं बाद में। हाँ, क्रिया के बिना कुछ और घटना तो होता नहीं। वहाँ काल हमको देखना था एक समय वाला, इसलिए हमने अंत में उसको वहां ले गए। हाँ, वैसे विभंग ज्ञानी देखना है तो मनुष्य में भी घटित कर सकते हैं। दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है और फिर वो मिथ्यात्व में गए हैं, विभंग ज्ञान है उनके। तेजोलेशा वाले और पद्मलेशा वालों में जानना चाहिए। ये जघन्य भी असंख्यात है और अजघन्य भी असंख्यात है, ये इन सभी मार्गणाओं में घटित होता है।
त्रस पर्याप्त को छोड़ा है,
त्रस पर्याप्तों में तो दसवें गुणस्थान में जघन्य होगा, वो संख्यात हो जाएगी। तिर्यंच गति में, तिर्यंचों में, ये बात ख्याल में, मनुष्य पर्याप्तों को छोड़ा था, त्रस पर्याप्तों को छोड़ा था। पंचेंद्रिय तिर्यंच तो सब लिए थे, परंतु सभी पंचेंद्रिय नहीं कहे थे। सभी पंचेंद्रिय लेते तो उसमें दसवें गुणस्थान वाले जी जघन्य हो जाते, तो फिर वहां संख्यात कहना पड़ता। पंचेंद्रिय तिर्यंच को लिया, परंतु सभी पंचेंद्रियों को नहीं लिया। पंचेंद्रिय अपर्याप्त को लिया, यानी जहां दसवां गुणस्थान घटित होता है उनको नहीं लिया। मनुष्य अपर्याप्त को लिया, हमने एक जगह मनुष्य को भी पढ़ा था स्वामित्व में लिए, वो स्वामित्व की बात बता रहे 19 पान पर। एक जगह हमने मनुष्य को भी पढ़ लिया था, स्वामित्व अनुभाग का जघन्य विभंग ज्ञानियों में, 19 पेज की पहली लाइन। दो बार उपशम श्रेणी पर चढ़कर उससे नीचे उतरकर आगम के अनुसार विभंग ज्ञान को प्राप्त करता है। तो विभंग ज्ञान को प्राप्त करने वाला मनुष्य में भी हो सकता है। ग्रेवेक में जाने से उसके कुछ विशेषता नहीं होती अनुभाग में। अर्थात मरकर उपरिम ग्रेवेक में उत्पन्न होकर वहां तो नियम से विभंग ज्ञान में होता ही है, इसलिए वहां उत्पन्न किया है।
पर ये जो मनुष्य जो दो बार श्रेणी चढ़ के उतरा है और मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, उसके और इस पे कोई फर्क नहीं होगा, उसका अनुभव
फर्क तो कुछ नहीं होगा। क्रिया तो दोनों की नहीं हो रही, फर्क कुछ नहीं होगा। ये क्यों कहना चाहते हैं, मनुष्यों में विभंग ज्ञान होगा ही, ये बात गारंटी से नहीं।
हाँ।
क्योंकि अवधि ज्ञानी होगा और उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा होगा तो उसका विभंग ज्ञान हो सकता है, परंतु ग्रेवेकों में वगैरह तो नियम से ही होता है और उपशम श्रेणी में ही मरकर जाता है तो वहां ग्रेवेक में जाएंगे, या मिथ्या दृष्टि होकर भी जाएंगे तो भी ग्रेवेक में जा सकते हैं, इसलिए ग्रेवेक का नाम लिया। एक जगह हमने मनुष्य की भी बात पढ़ी है, इसमें काल में या कहीं बीच में आई थी। अब यहां हम देखते हैं तिर्यंच में, ये जहां दोनों ही जघन्य और अजघन्य दोनों ही असंख्यात है वो हमने पढ़ा। अब तिर्यंच गति में, तिर्यंचों में जघन्य और अजघन्य अनुभाग विभक्ति वाले कितने हैं, तो दोनों ही अनंत है। देखो फिर भी जघन्य को अनंत विभाग प्रमाण कहेंगे, असंख्यात विभाग प्रमाण कहा था, असंख्यात विभाग क्यों? तिर्यंचों में जघन्य किसके होगा? सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्धि पर्याप्तक, वो करने वाले कितने जीव है? अनंत है। और अजघन्य वाले भी अनंत है, दोनों अनंत है, तो भी असंख्यात का भाग है। अनंत को असंख्यात का भाग देंगे तो भी असंख्या अनंत ही आया है। इसलिए वो असंख्यातवा भाग होते हुए भी अनंत है, प्रमाण अनंत है. क्योंकि हमने भागा भाग में देखा था उसको, असंख्यात वे भाग प्रमाण लिखा. इसी प्रकार अब ये जो दोनों ही अनंत ये जो घटित किया है, जहां जहां ये सूक्ष्म निगोद आते वो सब को ले सकते हैं. इसी प्रकार सब एकेंद्रिय, सब वनस्पति कायिक, सब निगोदिया. देखो ऊपर भी असंख्यात असंख्यात में भी एकेंद्रिय लिए थे, पर कौन से एकेंद्रिय लिए थे? सभी पृथ्वी कायिक, सभी अग्नि कायिक, बादर वनस्पति कायिक, प्रत्येक शरीर वाले, ऐसे लिए थे. निगोद को छोड़कर बाकी सब लिए थे. अब ये ऐसी मार्गणा लिए जिसमें निगोद भी गर्भित है. तीन पढ़े ना हमने. इसी प्रकार सब एकेंद्रिय, सब वनस्पति कायिक, सब निगोदिया, औदारिक मिश्र का योगी, कार्मण का योगी. कार्मण का योग में जघन्य वाले अनंत है और अजघन्य वाले भी अनंत है. जघन्य में तो केवल वो सूक्ष्म निगोद मरकर, जघन्य के साथ मरकर अन्य कहीं भी जाने वाले हो गए, और बाकी जो कोई है विग्रह गति में वो सारे अजघन्य हो गए. वो देव में से आते हो या कोई भी आते हो, कहीं भी जाते हो, तो कार्मण का योग में, तो कार्मण का योग में जीव कितने हैं? प्रत्येक समय में इतने अनंत जीव है उसमें, तो मर रहे हैं ना इतने सब, मरकर ही आएंगे उसमें. हर समय अनंत है. कार्मण कायोगी, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, असंयत. असंयत कहने से भी वो सब एक इंद्रिय आदि सब आ गए उसमें. कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले, कापोत लेशा वाले. अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी और अनाहारकों में जानना चाहिए.
ये
भव्य को क्यों छोड़ा? भव्यों में जगन्य दसवें गुणस्थान में होगा. यानी जिसमें निगोद में तो अनंत जीव है वहां भी पड़े हैं, परंतु उनमें जगन्य घटित नहीं होगा. हम एक को पकड़ते तो दूसरी अपेक्षा छूट जाती है. हाँ, वही तो कहते हैं. ये जब पढ़ रहे हैं तो दूसरा कोई दुनिया का विचार ही नहीं, पूरा उसमें हमारे वो कैसे डेरा होता है. हाँ, कंसंट्रेशन होता है, उपयोग की सूक्ष्मता होती है. यही तो है ना, राग द्वेष रहित जान रहे हैं. बाकी भी जानते हैं ना टीवी पर खबरें, परंतु वहाँ कितने यहाँ उथल पुथल होती है, राग द्वेष होते हैं. इसीलिए ये निर्जरा का कारण कहा मुनियों के लिए, अभी सम्यक दृष्टि जो है मुनिराज है, ये क्यों इसमें इतना उपयोग लगाते हैं? राग द्वेष रहित ये जानने का कार्य हो रहा है इसमें. असंख्यात गुणी निर्जरा कही है उनकी, तो स्वाध्याय को भी तप कहा कि नहीं तप का? सुना कुछ बोला थे? उनका कहना है अन्य अनुयोगों में इतना कंसंट्रेशन नहीं होता है, यहाँ वहाँ उपयोग चला भी जाता है, परंतु इसमें तो जाता नहीं. क्योंकि ये क्या कहना चाहते हैं ये अपने ख्याल में नहीं आते, और फिर हम वो कैसे डिराइव करना, इस बात पर हमारा ख्याल चलता है.
लेकिन इसमें जिसकी बुद्धि नहीं चलती है वो तो इसका विरोध किए बिना रहते भी नहीं है. वो कहते इसमें मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, उससे अच्छा तो अपन आत्मा की बात सोचेंगे, ऐसा करके वो एस्केपिज्म के पीछे लगते हैं. और भले ना तुम मत करो, लेकिन दूसरे को करने वालों को भी डिस्करेज करने को चाहते हैं.
ऐसा है, भगवान की वाणी को विरोध करने वालों को क्या कहना है, ऐसा है ना. हम अपना देखेंगे, अभी क्या करेंगे दूसरा. जो स्वयं पढ़ते उनको उसका क्या, अपने को क्या फायदा होता है, अपने ख्याल में आता है. पढ़े बिना तो नहीं आता था, पहले तो उसके नाम से डरते थे ना. ये तो अश्विन महीने तो सबसे पहले वो ज्ञान मार्गणा से शुरू किया है, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक चल रहा था उस समय. वो द्रव्य गुण पर्याय की भी पता नहीं था उनको, और डायरेक्ट ज्ञान मार्गणा में आगे बैठे, और अभी एक्सपर्ट है सबको. देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे, मनुष्य गति में बात चल रही है अभी, मनुष्यों में। जब मनुष्य सामान्य भी कहेंगे तो भी दसवां गुण स्थान तो है ही उसमें। जगन्य अनुभाग विभक्ति वाले जीव कितने हैं तो संख्यात है, अजगन्य अनुभाग विभक्ति वाले जीव असंख्यात है, क्योंकि मनुष्य इन जनरल बात ली थी इसलिए असंख्यात कहा। संख्यात और असंख्यात, अकेले मनुष्य पर्याप्त लेंगे तो दोनों को ही संख्यात कहेंगे। इसी प्रकार पंचेंद्रिय, अब पंचेंद्रिय इन जनरल चारों गति के पंचेंद्रिय लिए, उनमें भी जघन्य वाले तो दसवें गुणस्थान वाले हैं, वो संख्यात है, और बाकी सभी असंख्यात है। पंचेंद्रिय पर्याप्त, वो द्री बराबर करा, पंचेंद्रिय न ठीक नहीं दिख रहा है, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी। देखो अभी तक मनोयोगी वचन योगी को नहीं लिया था, वो है तो असंख्यात, तो उनमें सूक्ष्म सांप्राय संभव है इसलिए वे संख्यात हो जाते हैं। पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी। स्त्रीवेदी पुरुषवेदी में कौन सा जगन्य घटित होगा? बहुत अच्छा, सवेद भाग का अंतिम समय, वहां उनके लिए मोहिनी का जगन्य है, वे भी जीव संख्यात हो गए क्योंकि श्रेणी वाले हैं ना, और बाकी असंख्यात है। आविनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, इन सब में तो दसवां गुणस्थान है। संयता संयत, संयता संयतों में जघन्य किसके हैं? हाँ, दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के जो क्षायिक किए हैं। हाँ, तो संयता संयतों में जीव कितने हैं टोटल? असंख्यात, तिर्यंच भी है, और क्षायिक समय दृष्टि कितने हैं? तिर्यंचों में क्षायिक कितने हैं? केवल तिर्यंचों में क्षायिक पूछ रही हूँ, असंख्यात। तिर्यंचों में क्षायिक संयता संयत कितने हैं? संख्यात है, असंख्यात है। अच्छा, हाँ, भोग भूमि में जाएंगे तो संख्यात हो गए कि असंख्यात हो गए? बोलो,
असंख्यात।
मैं संयता संयत पूछ रही हूँ। तिर्यंचों में पांचवे गुणस्थान में एक भी क्षायिक समय दृष्टि नहीं है। हम मुझे पता था ये क्षायिक तो है, पहले मैंने क्षायिक कितने हैं पूछा तो बाबा असंख्यात है, परंतु संयता संयत क्षायिक कितने हैं? एक भी नहीं है, क्योंकि भोग भूमि में एक क्षायिक पाए जाते हैं और भोग भूमि में चौथे गुणस्थान के ऊपर गुणस्थान नहीं होता है। हाँ, तो संयता संयतों में जो जघन्य है वो मनुष्य।
संयता संयत में तिर्यंच में,
तिर्यंच में नहीं पूछा, यहाँ सभी संयता संयत लिए। देखो मैं तो आपको पहले पूछ रही थी कि संयता संयत सभी जीव असंख्यात है, क्योंकि तिर्यंचों को लिए बिना असंख्यात हो गए नहीं। मनुष्य संयता संयत तो संयत संख्या थी है, अब सभी संयता संयतों में जघन्य कौन है?
क्षायिक मनुष्य,
मनुष्य ही क्षायिक है, और वो भी कौन से? पहले दो बार उपशम से नहीं चढ़ के उतरे हुए हैं।
कृतकृत्य वेदक हुआ है, उसका अंतर्मुख तक हुआ है।
कृतकृत्य वेदक, अच्छा
वो अंतर्मुख तक रहता है ना,
वो अंतर्मुख तक होता है। वो तो वेदक के लिए कहा हमने, यहाँ तो क्षपणा पूरी कर दी तो भी अनुभाग तो उतना ही रहेगा ना उसका, मोहनीय का अनुभाग। हाँ, इसीलिए जघन्य संख्यात है और अजघन्य असंख्यात है, क्योंकि अजघन्य में सभी तिर्यंचों को ले लो, अभी जघन्य में केवल थोड़े मनुष्य हो गए, कौन से? दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के जिन क्षायिक हो गए हैं, कितने भी हो पूर्व कोटि में कितने भी जीव क्षायिक होते गए तो भी संख्यात ही हो गए ना, मनुष्य ही संख्यात है, तो भले कितने भी हो, हर छह महीने में कितने क्षायिक हो जाए तो भी पूर्व कोटि में तो संख्यात ही जीव क्षायिक समय दृष्टि हो जाएगी। चक्षु दर्शन वाले है असंख्यात, और चक्षु दर्शन वालों में जघन्य है वो दसवें गुण स्थान में है तो वो संख्यात हो जाते हैं। अवधि दर्शन वाले, शुक्ल लेशा वाले तो सभी शुक्ल लेशा वाले लेना। कहाँ कहाँ होते शुक्ल लेशा वाले?
मनुष्य,
मनुष्य तिर्यंच और देव, ऊपर के देव है ना, वो है असंख्यात। और शुक्ल लेशा वालों में जघन्य देखना है तो दसवें गुण स्थान के अंत में वो संख्यात हो गए। सम्यक दृष्टि, क्षायिक समय दृष्टि, एक समय दृष्टि और क्षायिक समय दृष्टि में तो दसवें के अंत में, और बाकी जीव तो है असंख्यात। वेदक समय दृष्टि, वेदक समय दृष्टि में अभी आप याद करो वो कृतकृत्य वेदक वाला, वेदक में जघन्य किसके है? पहले उपशम श्रेणी चढ़ के उतारो उसको, और फिर क्षपणा कर रहा है, कृतकृत्य वेदक होते ही उसका जघन्य हुआ। तो वो जीव संख्यात हो गए, और बाकी तो वेदक समय दृष्टि तो सभी गतियों में है तो वो असंख्यात है। उपशम सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टियों में जघन्य जो है कौन है, याद है?
जो
दूसरी बार श्रेणी चढ़ा है, ग्यारहवें में जाते उसके जघन्य होता है, फिर ग्यारहवें में हो या दसवें नवे आठवें सातवें कहीं भी नीचे तक आ जाए, तो उसके तो जब तक उसका उपशम द्वितीय उपशम चल रहा है तब उपशम सम्यक्त्व में उसके जघन्य होगा। सासाधन समय दृष्टि, वही उपशम वाला उपशम समय दृष्टि सासाधन में आता है, उसके जघन्य पाया जाता है। तो ये सारे जीव संख्यात है यही बात बताना है। सम्यक मिथ्या दृष्टि और संगी जीवों में जानना चाहिए। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में, अब ये दोनों ही जहां संख्यात है उसको बताएंगे। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में जघन्य और अजघन्य अनुभाग विभक्ति वाले जीव कितने हैं? संख्यात है। इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि, आहारक का योगी, आहारक मिश्र का योगी, अपगत वेदी, अकषायी, ये सारी मार्गणा ऐसी है जिनमें जीव ही संख्यात होते हैं, तो उसमें जघन्य वाले भी संख्यात, अजघन्य वाले भी संख्यात। मनोपरे ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्राय संयत और यथाख्यात संयतों में जानना चाहिए। विशेषार्थ, वो उसे क्षपक श्रेणी के दसवें गुणस्थान के अंतिम समय में मोह का जघन्य अनुभाग रहता है, और ऐसे जीवों की संख्या संख्यात है। अतः ओग से जघन्य अनुभाग वाले जीवों का परिमाण संख्यात कहा। शेष अनंत जीव अजघन्य अनुभाग वाले होते हैं। काय योगी आदि जिन मार्गणाओं में विवक्षित जीव राशि का प्रमाण अनंत है, विवक्षित यानी उस मार्गणा वाले, और क्षपक श्रेणी के दसवें गुणस्थान के अंतिम समय में मोह का जघन्य अनुभाग होता है, उनमें जघन्य और अजघन्य अनुभाग वालों का परिमाण ओग के समान ही जानना चाहिए। दसवें के अंत में काय योग पाया जाता है, इसलिए जघन्य की अपेक्षा संख्या वहां पर वो संख्यात है, और बाकी जीव अनंत है। तिर्यंच गति आदि जिन मार्गणाओं में जीव राशि का प्रमाण अनंत है, और जघन्य अनुभाग हत समुत्पत्ति कर्मा सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों के होता है। हत समुत्पत्ति कर्मा का अर्थ होता है जिन्होंने हत समुत्पत्ति कर लिया है कर्मों को, ऐसे जीव हत समुत्पत्ति कर्मा। उन दोनों में ही, दोनों ही अनुभाग वालों का परिमाण अनंत कहा है। एकेंद्रियों में सूक्ष्मों ने जो जघन्य किया है, हत समिघात किया है अनुभाग का, ऐसे जीव भी अनंत है। और अजगन्य वाले भी अनंत हैं। नरक गति से लेकर पद्मलेशा पर्यंत की असंख्यात राशि वाली मालगणाओं में गया हेलो हेलो हाँ अभी है हेलो हेलो हाँ तथा नरक गति से लेकर पद्मलेशा पर्यंत की असंख्यात राशि वाली मार्गणाओं में क्या कहते हैं ये अनंत वाली देखी उन्होंने बता दी। अब ये जो ऐसी मार्गणा है कि उनकी राशि असंख्यात है में दोनों अनुभाग वालों का परिमाण असंख्यात कहा। सामान्य मनुष्य आदि संगी मार्गणा पर्यंत जिन मार्गणाओं में जीव राशि का प्रमाण तो असंख्यात ही है किंतु जघन्य अनुभाग क्षपक श्रेणी में या उपशम श्रेणी से गिरे हुए जीवों के होता है जो हमने अभी पांचवा गुणस्थान वगैरह देखा उनमें जघन्य अनुभाग वालों का परिमाण संख्यात कहा और अजघन्य अनुभाग वालों का परिमाण असंख्यात कहा तथा मनुष्य पर्याप्त आदि संख्यात जीव राशि वाली मार्गणाओं में दोनों अनुभाग वालों का परिमाण संख्यात कहा। यह भी जो हमने पढ़ा था उसी का यह विशेषार्थ है। विशेष इतना है कि इन सब मार्गणाओं में अलग अलग स्वामित्व का विचार कर यह परिमाण ले आना चाहिए। कथन तो सबके लिए कहीं कहीं समान होगा परंतु वो जघन्य का स्वामी कौन है ये सोचकर फिर उसको डिराइव करना है। यहाँ अलग अलग स्वामित्व का उल्लेख न कर सूचना मात्र की है क्योंकि जह हमने देख ही लिया था जब पढ़ते समय कि वो स्वामी कौन होगा जघन्य का। जैसे वेदक समय तो के हमने जघन्य देखा तो उसमें भी उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा हुआ जीव लेना है और फिर क्षपणा करने वाला। इस प्रकार परिमाणानुगम समाप्त हुआ। अब क्षेत्रानुगम ये नाना जीवों की अपेक्षा हम देख रहे हैं। हमने नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय देखा है फिर भागा भाग देखा है और अभी परिमाण देखा। अब क्षेत्रानुगम देखेंगे अभी हम ये 18 नंबर का अधिकार है जो अनुगम जिसको कहते हैं। क्षेत्रानुगम दो प्रकार का है जघन्य और उत्कृष्ट। जब क्षेत्र कहते हैं तो यहाँ उत्कृष्ट अनुभाग वाले जो जितने जीव है उनका जो प्रमाण है तो उनकी अवगाहना उनका रहने का ठिकान उनका विहार का ठिकान उसकी अपेक्षा से बात करेंगे। यहाँ पर वर्तमान को क्षेत्र कहेंगे और अतीत काल की अपेक्षा स्पर्शन कहेंगे। तो क्षेत्रानुगम दो प्रकार का है जघन्य और उत्कृष्ट। प्रकृत में उत्कृष्ट से प्रयोजन है। निर्देश दो प्रकार का है ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ से मौनीय कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीवों का कितना क्षेत्र है ते लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र है। क्योंकि ये कौन करते हैं जीव तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि मरकर अन्य गतियों में जाते हैं तो भी उनके उत्कृष्ट पाया जाता है परंतु उन जीवों का प्रमाण तो उसी में से गए ना वो तो उनका प्रमाण उतना होगा। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीवों का सब लोक क्षेत्र है। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंच एकेंद्रिय बादर एकेंद्रिय बादर एकेंद्रिय पर्याप्त बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त, उत्कृष्ट की बात चल रही नहीं, जघन्य की नहीं चल रही है। उत्कृष्ट वही होंगे जो पंचेंद्रिय में उत्कृष्ट का अनुभाग लेकर वहां जन्मते हैं। पृथ्वी का एक बादर, पृथ्वी का एक बादर, पृथ्वी का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक पर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्त, अपकायिक बादर, अपकायिक बादर, अपकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अपकायिक, सूक्ष्म अपकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अपकायिक अपर्याप्त, तेजस कायिक बादर, तेजस कायिक बादर, तेजस कायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म तेजस कायिक, सूक्ष्म तेजस कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म तेजस कायिक अपर्याप्त, वायु कायिक बादर, वायु कायिक बादर, वायु कायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वायु कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वायु कायिक अपर्याप्त, वनस्पति कायिक बादर, वनस्पति कायिक बादर, वनस्पति का एक पर्याप्त, बादर वनस्पति का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पति का एक, सूक्ष्म वनस्पति का एक पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पति का एक अपर्याप्त, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर, बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर अपर्याप्त। इन सब में बादर एकेंद्रिय पर्याप्तों को छोड़ा है। निगोदिया बादर, निगोदिया बादर, निगोदिया पर्याप्त, बादर निगोदिया अपर्याप्त, ये निगोदियों में पर्याप्त को ले लिया है। सूक्ष्म निगोदिया, सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्त, सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त, कायोगी औदारिक, कायोगी औदारिक मिश्र, कायोगी कार्मण, कायोगी नपुसक वेदी, क्रोधी मानी मायावी लोभी, मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी, असंयत अचक्षु दर्शन वाले, कृष्ण नील और कापोत्लेशा वाले, भव्य अभव्य मिथ्या दृष्टि, असंगी आहार्य और अनाहार्यों में जानना चाहिए।
यहाँ पे बादर पृथ्वी का एक और उसको लिया है जो असंख्याति है जी, उनको मरणांतिक की अपेक्षा पूरा लोक हो जाएगा ना,
किस वो तो स्पर्शन में ले लेंगे।
नहीं यहाँ पे भी ऐसे है ना कि अनुत्कृष्ट अनुभव वाले सब लोग क्षेत्र का स्पर्श किया है,
अनुत्कृष्ट क्योंकि बाकी सब रहने वाले अनुत्कृष्ट ही है ना।
नहीं बराबर है, पर यहाँ पे बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक उसको भी ले लिया तो हाँ। वो तो असंख्यात ही है।
हाँ वो असंख्यात है
और पूरा ले, पूरा क्षेत्र उसका पूरा लोक बताया है, सब लोक बताया है।
बादर पर्याप्तकों में देखो, इनमें जो उत्कृष्ट वाले जो उत्पन्न होते हैं वो कहाँ से मरकर उत्पन्न होते हैं?
पंचेंद्रिय
में से,
वो तो असंख्यात वापस घटित हो जाए।
हाँ।
पर सब लोग जो क्षेत्र बताया है,
हाँ,
जो अपर्याप्त में भी जो असंख्यात ही है,
असंख्यात होने पर भी उनकी संख्या बहुत बड़ी है। बादर वायु का एक अपर्याप्त उनको लिया और पर्याप्त उनको नहीं लिया, क्योंकि वो पर्याप्त बादर जीवों में पर्याप्त जीव अल्प है, अपर्याप्त तो उनसे असंख्यात गुणे हैं, और सूक्ष्मों में
अपर्याप्त ज्यादा है और
अपर्याप्त कम है, पर्याप्त ज्यादा है, फिर भी संख्यात गुणे हैं, वो दोनों ही ज्यादा है, बादर से सूक्ष्म ही मूल में ज्यादा है। एकेंद्रियों में बादर और सूक्ष्म का परसेंटेज हम देखेंगे तो सूक्ष्म जीवों की संख्या ज्यादा है, सूक्ष्मों में पर्याप्त ज्यादा है अपर्याप्तों से, और बादर में अपर्याप्त बहुत ज्यादा है पर्याप्तों से, इसलिए सब जगह पर्याप्तों को छोड़ा था। उसका विशेषार्थ में बताएगा और भी हाँ, रहते हैं असंख्यात भाग में परंतु उसकी संख्या ज्यादा है, उनकी अवगाहना काउंट करना मल्टीप्लाइड बाय अवगाहना मल्टीप्लाइड बाय उनकी संख्या वो ज्यादा हो जाती है।
नहीं पर सब लोग हो जाएगा, वही मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बताया है।
कहाँ पर?
ये जो है ना अजगण्य अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जब जीवों का सब
अनुत्कृष्ट अनुभाग वाले विभक्ति वाले जीवों का सब लोग क्षेत्र है ये जो कहा है, तो पूरे लोक में जितने जीव है सूक्ष्म जीव सब जगह रह रहे, यहाँ ओग की अपेक्षा बात की है पहले, तो ओग में जो अनुत्कृष्ट वाले सब लोग कहाँ है, तो अनुत्कृष्ट वाले तो सब जगह पाए ही जाते हैं ओग में। आप कहते हैं यहाँ जो नीचे की मार्गणाओं में जो सब लोग बताया है, हाँ, तो वहाँ मारणांतिक हो सकेगा।
मारणांतिक की
अपेक्षा, परंतु यहाँ उत्कृष्ट की बात चल रही है ना, उत्कृष्ट में
तो
उत्कृष्ट में असंख्यात वाला, अनुत्कृष्ट तो पूरे लोक में होंगे क्योंकि वो मारणांतिक करते हैं। देखो शेष मार्गणाओं में, ये जो इतनी मार्गणाएं बतलाई है उसमें शेष मार्गणाओं में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अब जो शेष मार्गणा है, अभी हम बादर वायु का एक पर्याप्त को छोड़ देते हैं और अन्य शेष मार्गणा देखते हैं। जैसे जल का एक में लिया, अप का एक, बादर अप का एक पर्याप्त को छोड़ा था, तो वो मार्गणा जो छोड़ी थी, शेष मार्गणाओं में क्या घटित होगा? उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। वह पूरा लोक नहीं लिया है, हाँ। इतनी विशेषता है कि बादर वायु का एक पर्याप्तको में उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीवों का उत्कृष्ट क्षेत्र लोक का असंख्यातवा भाग कहा, क्योंकि ये जीव कम है, पंचेंद्रियों में से आए हुए हैं, इसलिए उनका उनकी संख्या अल्प है, तो लोक का असंख्यातवा भाग होता है। और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों का क्षेत्र लोक का संख्यात्वा भाग कहा, क्योंकि वो 5/14 राज्यों में पाए जाते हैं ना। ये बादर वायु का एक पर्याप्त उनको अलग से बताया है, बाकी अन्य जो शेष मार्गणा है उनमें उत्कृष्ट हो या अनुत्कृष्ट लोक का असंख्यात्वा भाग है। ये बात ख्याल में आई? विशेषार्थ, वर्तमान में उत्कृष्ट अनुभाग वाले जीव लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये कारण बता रहे हैं, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि जीव ही मुंह का उत्कृष्ट अनुभाग बंद करते हैं, और वो उत्कृष्ट कब तक रहता है? अंतर्मूर्त तक। हमने देखा था ना, उत्कृष्ट का लगातार काल कितना है? एक जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्त। और घात किए बिना इनके अन्य इंद्रिय वालों में उत्पन्न होने पर वहां उत्कृष्ट अनुभाग देखा जाता है, इसलिए ओग से इनका क्षेत्र लोक का असंख्यातवा भाग और अनुत्कृष्ट अनुभाग वालों का क्षेत्र सर्वलोक है, यह स्पष्ट ही है। इसी प्रकार आदेश से जिन जीवों का क्षेत्र सर्वलोक है उनमें ओघ की ही तरह क्षेत्र होता है, यानी जिनके मार्गणा में जो क्षेत्र सर्वलोक है उसमें भी यही घटित होता है। शेष मार्गणाओं में दोनों ही अनुभाग वालों का क्षेत्र लोक का असंख्यातवा भाग है। केवल बादर वायु का एक पर्याप्तको में उत्कृष्ट अनुभाग वालों का क्षेत्र लोक का असंख्यातवा भाग है, और अनुत्कृष्ट अनुभाग वालों का क्षेत्र लोक का संख्यात्वा भाग है, क्योंकि ये जीव लोक के संख्यात्वे भाग क्षेत्र में रहते हैं। बादर वायु का एक पर्याप्त, 5 राज्यों तक पाए जाते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट अनुभाग क्षेत्रानुगम समाप्त हुआ। अब प्रकृत में जघन्य से प्रयोजन है, निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश, ओघ और आदेश। ओघ से मौनीय कर्म के जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले जीवों का क्षेत्र कितना है? ओघ से किसके होता है जघन्य?
दसवें
गुणस्थान के अंत में, तो वो कितना होगा क्षेत्र? लोक का असंख्यात्व भाग। तो कहते लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र है। अजघन्य अनुभाग विभक्ति वाले जीवों का सब लोक क्षेत्र है। इसी प्रकार यही कथन और कहाँ घटित होता है? काय योगी, औदारिक काय योगी, नपुसक वेदी, नपुसक वेदी में जघन्य सवेद भाग क्षपक श्रेणी में, उसका अंत समय। क्रोधी मानी मायावी लोभी और चक्षु दर्शन वाले भव्य और आहार को में जानना चाहिए। कौन सा लोक का असंख्यात भाग और पूरा लोक। आदेश की अपेक्षा नारकियों में मुनि कर्म की जघन्य और अजघन्य अनुभाग विभक्ति वाले जीवों का कितना क्षेत्र है? लोक के असंख्यात भाग, क्योंकि नारकी रहते ही लोक के असंख्यात भाग में, उसमें जघन्य भी तो उतना ऐसा ही कहेंगे, अजघन्य भी ऐसा ही कहेंगे। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, सब मनुष्य, सब देव, सभी देव, सब विकलेंद्रिय, सब पंचेंद्रिय, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर अप का एक पर्याप्त, बादर तेजस का एक पर्याप्त, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, सब त्रस का एक, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, वैक्रिक का योगी, वैक्रिक मिश्र का योगी, आहार का योगी, आहार मिश्र का योगी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, अपगत वेदी, अकषायी, विभंग ज्ञानी, अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्राय संयत, यथाख्यात संयत, संयता संयत, चक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले, तेजो लेशा वाले, पद्म लेशा वाले, शुक्ल लेशा वाले, सम्यक दृष्टि, वेदक समय दृष्टि, क्षायिक समय दृष्टि, उपशम समय दृष्टि, सासाधन समय दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और संगी जीवों में जानना चाहिए। इनमें जघन्य हो या अनजघन्य हो, ये लोक के असंख्यात भाग में ही उनका क्षेत्र है। ये नारकियों के समान और कहां है वो बता दिया। तिर्यंच गति में, तिर्यंचों में मोहनीय कर्म की जघन्य और अजघन्य अनुभाग विभक्ति वाले जीवों का कितना क्षेत्र है? सब लोक क्षेत्र है। तो पूरे लोक में तिर्यंच गति के जीव पाए जाते हैं, उसमें जघन्य भी हो गए और अजघन्य भी हो गए। इसी प्रकार ये सब जगह जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से? एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय पर्याप्त, बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त, पृथ्वी कायिक, बादर पृथ्वी कायिक, बादर पृथ्वी कायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक अपर्याप्त, अपकायिक, बादर अपकायिक, बादर अपकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अपकायिक, सूक्ष्म अपकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अपकायिक अपर्याप्त, तेजस कायिक, बादर तेजस कायिक। देखो बादर में पर्याप्तों को छोड़ा है,
नहीं बादर एकेंद्रिय पर्याप्त ले लिया ना,
बादर एकेंद्रिय पर्याप्त कहते तो उसमें निगोद आ जाते सारे। तो बादर तेजस का एक, बादर तेजस का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म तेजस का एक, सूक्ष्म तेजस का एक पर्याप्त, सूक्ष्म तेजस का एक अपर्याप्त, वायु का एक, बादर वायु का एक, बादर वायु का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म वायु का एक, सूक्ष्म वायु का एक पर्याप्त, सूक्ष्म वायु का एक अपर्याप्त, सब वनस्पति का एक, सब निगोदिया, सब लिए ना निगोद, बादर सूक्ष्म सभी लिए, औदारिक मिश्र का योगी, कारमाण का योगी, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, असंयत, कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले, कपोत लेशा वाले, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी और अनाहारकों में जानना चाहिए। बादर वायु का एक पर्याप्त जीवों में जघन्य और अजघन्य अनुभाग विभक्ति वाले जीवों का क्षेत्र लोक के संख्यात्वे भाग प्रमाण है। देखो उत्कृष्ट में तो
लोक का असंख्यात्वा भाग भी
लिया, असंख्यात्वा भाग और संख्यात्वा भाग कहा था, और जगन्य में और अजगन्य में लोक का संख्यात्वा भाग, यानी जगन्य वाले ज्यादा पाए जाएंगे उसमें। नहीं समझे? बादर वायु कायकों में जगन्य कहाँ से आएंगे?
सूक्ष्म
पर्याप्त में से आए हुए जी, है ना। विशेषण ओ से जगन्य अनुभाग का सत्व क्षपक सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में होता है, अतः ओग से जगन्य अनुभाग वालों का क्षेत्र लोक का असंख्यात्वा भाग और अजगन्य अनुभाग वालों का क्षेत्र सर्वलोक कहा। जिन मार्गणाओं में जीवों का क्षेत्र सर्वलोक है, सर्व हुआ सर्वलोक है, तथा जगन्य अनुभाग भी ओघ की तरह होता है, उनमें ओघ की तरह क्षेत्र कहा है। जैसे कायोगी पूरे लोक में है और उनका जगन्य दसवें गुण स्थान में पाया जाता है, तो जगन्य का क्षेत्र लोक का असंख्यात्वा भाग और अजगन्य का पूरा लोक। आदेश से नरक गति से लेकर संगी पर्यंत जिन मार्गणाओं में जीवों का क्षेत्र लोक का असंख्यात्वा भाग है, उनका क्षेत्र ही लोक का असंख्यात्वा भाग, उनमें जगन्य और अजगन्य अनुभाग वालों का क्षेत्र लोक का असंख्यात्वा भाग का, जैसे हमने देखा ना स्त्री वेदी है, पुरुष वेदी है, आरक वाले है, संयत है, संयता संयत है, जो कोई वो रहते ही लोक के असंख्यात विभाग में, उनमें जगन्य भी कहाँ है असंख्यात विभाग और जगन्य भी असंख्यात विभाग। तथा सामान्य तीरियंचों में और एकेंद्रिय से लेकर अनाहारक पर्यंत जिन मार्गणाओं में जीवों का क्षेत्र सर्वलोक है, उस मार्गणा का क्षेत्र कितना है तो पूरा लोक। तथा जगन्य अनुभाग हत समुत्पत्ति कर्मा एकेंद्रिय जीव के पाया जाता है, उनमें जगन्य और अजगन्य अनुभाग वालों का क्षेत्र सर्वलोक कहा। यानी जिसमें ये निगोद आदि पाए जाते हैं, हत समुत्पत्ति कर्मा जो है, या वो मरकर जहां पाए जाते हैं, तो पूरा लोक बताया। केवल बादर वायु का एक पर्याप्त जीवों में दोनों विभक्तियों का लोक का संख्यात्वा भाग क्षेत्र कहा, क्योंकि इस मार्गणा का क्षेत्र ही इतना है। इस प्रकार क्षेत्रानुगम समाप्त हुआ। छोटे छोटे हैं अनुयोग सब हैं। अब स्पर्शनानुगम,
ये कोई भी गति से जाएगा तो हत्ता समुत्पत्ति के लिए पल्य का असंख्यात्वा भाग ही लगेगा।
क्या क्या?
दो इंद्रिय से जाएगा या तीन इंद्रिय से जाएगा, जो सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त है।
कहाँ से कहाँ जाने वाले जीव ले ले?
ये कोई भी गति से,
कोई भी गति से सूक्ष्म है,
एकेंद्रिय में जाएगा तो हत्ता समुत्पत्ति करने के लिए।
हत्ता समुत्पत्ति का काल यहाँ नहीं आया है कितना है? जैसे हमने
नहीं, काल नहीं, पर हमने आगे देखा था,
स्थिति में देखा था,
पल्य का
पल्य के असंख्यात विभाग में स्थिति को देखा था हमने। तो वैसा यहाँ कितना काल लगता है हत्ता समुत्पत्ति की, ये बातें नहीं। ऑफकोर्स स्थिति भी घटती है, अनुभाग भी घटता है, दोनों साथ साथ घटता है, परंतु ऐसा स्पेसिफिक उसका उल्लेख नहीं आया है। आगे आएगा देखेंगे।
नहीं तो ये समुत्पत्ति वाले
वो तो आएंगे ना, सब भुजाकार अल्पतर सब आएंगे, उसमें लगाएंगे काल वगैरह, वो बताएंगे। क्योंकि अभी हम स्थिति की बात कितने डिटेल से पढ़ी है, तो यहाँ भी आएगी बात, अभी पूरी पुस्तक बाकी है ना। अब स्पर्शानुगम ये कितना, 19 नंबर है क्या है? उन्नीस नंबर का अनुगम चलेगा यहाँ। स्पर्शन अनुगम दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट से प्रयोजन है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ से मौन्य कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का, ये वर्तमान की बात बताई जो हमने क्षेत्र में पढ़ी थी। क्यों? ये संगी पंचेंद्रिय या उनमें से मरकर अन्यत्र जाने वाले जीव हैं। लोक के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का, क्योंकि हमने देखे देव जो है हाँ वो उत्कृष्ट का बंद करते अंतर्मूर्त तक उत्कृष्ट रहते हैं, विहार करके नीचे तक जाते हैं, तो 8/14। और सब लोग का स्पर्शन किया है, हाँ सब लोग का जो है ना मारणांतिक है, उपपाद है, क्योंकि यहाँ तो अन्यत्र भी उत्पन्न होते तो वहां भी उत्कृष्ट रहेगा जब तक घात नहीं करते। घात किए बिना पंचेंद्रिय जीव जिसने उत्कृष्ट अनुभाग बांधा है कहीं भी जन्म लेता है। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों ने सब लोग का स्पर्शन किया है, ये तो आसान है। विशेषण ओग से उत्कृष्ट अनुभाग वालों ने, जिनके उत्कृष्ट अनुभाग है ऐसे जीवों ने मारणांतिक और उपपाद की अपेक्षा सर्वलोक क्षेत्र का स्पर्शन किया है तथा वेदना कषाय विहारवत स्वस्थान वैक्रियक समुद्घात की अपेक्षा वर्तमान काल में लोक के असंख्यातवे भाग का स्पर्शन किया है और अतीत काल में कुछ कम 8/14 राजु क्षेत्र का स्पर्शन किया है।
ये विहारवत स्वस्थान और वैक्रियक समुद्घात,
हाँ देखो विहारवत स्वस्थान और वैक्रियक समुद्घात दोनों बातें क्यों ली ऐसा पूछा है ना आपने। हाँ तो स्वस्थान स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान ऐसे दो बातें, वैक्रियक समुद्घात तो अन्य जीव भी करते हैं, मनुष्य भी वैक्रियक समुद्घात करेंगे, तिर्यंच भी करेंगे, वैसे देव भी जो विहार करते हैं वैक्रियक शरीर के द्वारा करते हैं। हाँ
तो ये अलग क्यों बताया विहारवत स्वस्थान और वैक्रियक समुद्घात,
ये अलग अलग पद जो होते हैं ना, वेदना वेदना है कषाय है, यानी मूल शरीर के साथ विहार करना उसको विहारवत स्वस्थान का, और जो वैक्रियक समुद्घात के द्वारा जहाँ
तो
जाता
है होता तो वैक्रियक समुद्घात की अपेक्षा होता है ना, क्योंकि उनका तो ओरिजिनल शरीर तो वहाँ पे ही रहता है।
हाँ परंतु उनको भी विहारवत कहने की पद्धति है देवों के लिए, क्योंकि उनका जो यहाँ नीचे आना होता है तो विक्रिया के द्वारा ही आना होता है। हाँ विक्रिया शरीर वैक्रियक शरीर के द्वारा,
और देव विहारवत भी करते हैं ओरिजिनल शरीर के साथ भी जाते हैं।
हाँ जाएंगे तो विहारवत स्वस्थान और वैक्रिक समुद्घात अपेक्षा वर्तमान काल में लोक के असंख्यातवे भाग का स्पर्शन किया है और अतीत काल में कुछ कम 8/14 राजु क्षेत्र का स्पर्शन किया है, ये तो आसान है ना, हमने बहुत बार देखा है। अनुत्कृष्ट अनुभाग वाले चूंकि सर्वलोक में पाए जाते हैं अतः उन्होंने संभव पदों के द्वारा सर्वलोक क्षेत्र का स्पर्शन किया, उनमें जो कोई पद संभव है, संभव पद यानी जो पॉसिबल है वो सब आदेश से नारकियों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, तो वर्तमान में तो लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का और लोक के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। ये कैसे होगा, मारणांतिक और उपपाद, क्योंकि नरक में जन्मने वाले हैं उनमें उपपाद की अपेक्षा भी कहते हैं। पहली पृथ्वी में क्षेत्र के समान भंग है, क्या क्षेत्र है, लोक का संख्या होगा, क्योंकि पहले पृथ्वी में उपपाद करने वाले या वहां से मारणांतिक करने वाले वो तो लोक का असंख्यात ही भाग होता है, दूसरी पृथ्वी से एक राजू वगैरह घटित होगा तो 1/14 कहेंगे वहां पर, नहीं ख्याल में आया। पहला नरक कितना नीचे है, हाँ एक राजू नहीं, दूसरी पृथ्वी एक राजू नीचे है,
ये तो ये खड़ भाग के लिए
हमने देखा ना 16,000 फिर 80,000 और फिर 84,000
1,80,000
योजन है। हाँ तो 1,80,000 कुछ नहीं है, लोक का असंख्या तो अभाव है। इसलिए पहले पृथ्वी के लिए उन्होंने कहा क्षेत्र के समान भंग है, यानी अतीत काल की अपेक्षा भी
लोक का असंख्या
वो पूरा कवर होगा, जित जहाँ जहाँ नरक है फिर भी वो लोक का असंख्या तो ही भाग होगा। ख्याल में आती बात प्रेरणा भी? दूसरी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक मोनीय कर्म की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का ये वर्तमान अपेक्षा और लोक के 14 भागों में से क्रम से कुछ कम एक, क्योंकि वो पृथ्वी के नीचे तक नहीं ना, 1,000 योजन ऊपर होता है नरक, कुछ कम एक दो तीन यानी कुछ कम सब जगह लगाना, कुछ कम एक कुछ कम दो ऐसा 3, 4, 5 और 6 भागों का स्पर्शन किया है, यानी दूसरी पृथ्वी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। विशेषार्थ, सामान्य से नारकियों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन कुछ कम 6/14 राजु प्रमाण है। ये सातवीं नरक की अपेक्षा 6/14 कहा और वही सामान्य नारकियों का स्पर्शन कहा। द्वितीय आदि पृथ्वियों में वर्तमान स्पर्शन तो इतना ही है और अतीत स्पर्शन क्रम से कुछ कम 1/14 राजु प्रमाण आदि है। द्वितीय आदि लिखा ना, यानी द्वितीय में कुछ कम एक और वहां आदि में जो जितना एक एक राजु बढ़ाना उसमें। यतः इन दोनों प्रकार के स्पर्शन के समय मोनीय की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति संभव है, यानी कुन किसी जीव के उत्कृष्ट होगा किसी के अनुत्कृष्ट होगा तो दोनों ही है, अतः इनका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। पहली पृथ्वी में स्पर्शन क्षेत्र के समान ही है, अतः इसमें दोनों प्रकार की विभक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान कहा, यानी लोक का असंख्यात अभाव। तिर्यंचों में मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का ये वर्तमान में और सब लोक क्षेत्र का स्पर्शन किया है। तिर्यंचों में से वो मारणांतिक करने वाले और उत्कृष्ट के साथ अन्यत्र जन्मने वाले यानी उपपाद वाले वो सब ले जाते। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों का स्पर्शन ओघ के समान है यानी पूरा लोक। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले सब पंचेंद्रिय तिर्यंच और सब मनुष्यों ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का ये वर्तमान और सब लोक का स्पर्शन किया है। सब लोक का किस अपेक्षा से लेंगे, उपवाद लेना कि नहीं लेना?
नहीं।
क्यों नहीं लेना?
वहाँ पे तो उत्कृष्ट अनुभव हो ही नहीं सकता है ना।
उपवाद इसलिए नहीं कहना क्योंकि मरकर पूरे लोक में जाने वाले वो एकेंद्रिय हो जाएंगे, उपवाद के समय उनको एकेंद्रिय कहेंगे, वहाँ उत्कृष्ट अनुभाग तो होगा, उन जीवों को हम एकेंद्रिय कहेंगे। पंचेंद्रियों में से पंचेंद्रियों में जाने वाले लोग के असंख्यात भागी क्षेत्र में जाएंगे, नहीं समझे? देखो अब यहाँ सब लोग जो कहा है, उत्कृष्ट अनुभाग वाले कौन है जीव? पंचेंद्रियों को लेना है, जब तक मरते नहीं तब तक पंचेंद्रिय है, मरकर अन्यत्र जन्मेंगे तो उनको हम एकेंद्रिय कहेंगे। तो उपपाद की अपेक्षा जो पूरा लोक है वहां उसको एकेंद्रिय हो जाएंगे, है तो अनुभाग उत्कृष्ट। अब पंचेंद्रिय में उत्कृष्ट है हाँ ठीक है, चलो अभी और थोड़ी रही। अब क्या कहना चाहती हूँ मैं, पंचेंद्रिय के रहते हुए उत्कृष्ट अनुभाग है और मारणांतिक किया है
वो पंचेंद्रिय के लिए।
तो पंचेंद्रिय कहेंगे, और मारणांतिके तो पूरे लोक में कहीं भी कर सकते हैं। अतीत काल लेना है तो पूरा लोक घटित होगा। पंचेंद्रियों में पूरा लोक कैसे घटित होगा? मारणांतिक की अपेक्षा। वो पंचेंद्रिय मरकर एकेंद्रिय में जाते हैं, अनुभाग तो उत्कृष्ट है, परंतु तब उन जीवों को क्या कहेंगे हम? एकेंद्रिय कहेंगे।
उपपाद की अपेक्षा,
हाँ, उपपाद की अपेक्षा एकेंद्रिय कहेंगे अभी उनको। तो यहाँ उपपाद को नहीं लेना है।
जो पंचेंद्रिय जीव उत्कृष्ट के साथ एकेंद्रिय में उत्पन्न होते हैं,
हाँ,
छोटे में छोटे काल के लिए,
हाँ,
और वापस पंचेंद्रिय में आते हैं, उसको भी उत्कृष्ट हो सकता है?
नहीं, वहाँ तो कुछ अंतर्मूर्त में तो घटेगा ही उनका,
कम हो जाएगा, हाँ, तो वो उत्कृष्ट के साथ आएगा,
क्योंकि
तो
ऐसे भी पंचेंद्रिय में भी रहे तो अंतर्मूर्त में तो घट ही जाता है,
हाँ,
तो उत्कृष्ट के साथ पंचेंद्रिय में नहीं आएंगे,
आएगा ही नहीं,
हाँ। उत्कृष्ट के साथ पंचेंद्रिय वाला पंचेंद्रिय में आएगा,
हाँ,
परंतु उसका का क्षेत्र तो असंख्यात भाग होगा। बड़ा है क्षुद्र भव का काल अंतर्मूर से बड़ा, ये हमने काल में देखा था। एक जीव की अपेक्षा क्षुद्र भव में से उत्कृष्ट का काल घटाया था तो अनुत्कृष्ट का काल निकाला था, यानी वो भव बड़ा है उसका, क्षुद्र भव बड़ा है अंतर्मूर उसका। तो ये अभी हमने पंचेंद्रिय की बात पढ़ी थी। दिव्यांशों में सब लोग का, मनुष्यों के लिए भी वही बात है, मनुष्य रहते तो लोग क्या संख्यात विभाग, परंतु मारणांतिक करके और अतीत काल लिया है हमने, तो कहीं भी पूरे लोक में कहीं भी मारणांतिक होता है, उत्कृष्ट में है तब तक। इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त, क्यों अपर्याप्त, उनका स्पर्शन क्षेत्र के समान है। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त, उसका स्पर्शन क्षेत्र के समान है, ने लोक के असंख्यात विभाग कहा। ये आपके प्रश्न का उत्तर भी इसी में आया, क्योंकि ऐसे जीव उत्कृष्ट अनुभाग वाले कब होते हैं? जो संगी में से उत्कृष्ट के साथ इसमें पैदा हुए तभी। तो जब तक उत्कृष्ट है तब तक उनका मारणांतिक नहीं हो सकता है, वो अनुत्कृष्ट हो जाएगा, अविका बंद करेंगे, फिर जहाँ यथा योग्य मारणांतिक करेंगे। तो जब मारणांतिक का समय आएगा, ये अनुत्कृष्ट ऑलरेडी है ही,
तो संगी पंचेंद्रिय में से जो मारणांतिक करेंगे उसकी अपेक्षा हो सकता है,
उसकी अपेक्षा या मरकर इसमें उत्पन्न हुए उनकी अपेक्षा भी है। उसमें उपपाद भी लगाओ ना, इसमें चलेगा, इसमें उपपाद चलेगा, क्यों? अपर्याप्त की आयु विग्रह गति से शुरू हो गई है, और वो पंचेंद्रियों में से संगी में से उत्कृष्ट अनुभाग लेके आए हैं। इनमें उपपाद की अपेक्षा तो उत्कृष्ट वाले गिनो, मगर मारणांतिक वाले नहीं गिनो। उसमें हमने मारणांतिक को गिना था, उपपाद को छोड़ा था। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले देवों ने, अभी देवों की बात चल रही, कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का, यह वर्तमान का रहने का ठिकाना। 14 भागों में से कुछ कम 8, ये विहारवत स्वस्थान कहते जिसको हम, और कुछ कम 9 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है मारणांतिक। मारणांतिक वो 8वीं पृथ्वी में करने वाले। इसी प्रकार सब देवों में स्पर्शन, श के ऊपर रफा देना, स्पर्शन कहना चाहिए सब देवों में, परंतु उसमें वो ऊपर के देवों में सौधर्म के ऊपर वो मारणांतिक नहीं होगा।
अच्छा,
मारणांतिक एकेंद्रियों में कौन करते हैं? सौधर्म तक के ही करते हैं। इतनी विशेषता है कि अपने अपने स्पर्शन को जानकर कथन करना चाहिए। अपने अपने स्पर्शन को जानकर क्यों? सौधर्म तक ही एकेंद्रियों में जा सकते, तो मारणांतिक वहाँ हो सकता है।
और विहारवत,
अब ऊपर के तो विहारवत तो करेंगे, विहार तो करेंगे,
12वें तक ही करेंगे ना,
हाँ, तो विहार करेंगे तो आनंद से लेकर ऊपर के नहीं करेंगे, तो उनका स्वस्थान घटित करेंगे। क्या लाई बात? उनका विहार कहाँ तक? मध्य लोक तक, नीचे तक नहीं ले जाना।
अच्छा, मध्य लोक तक,
मध्य लोक तक है, मध्य लोक तो है विहार, नरकों में नीचे नहीं जाते हैं।
और अरुदेश्वर अनुत्तर वाले तो स्वस्थान की अपेक्षा,
वो तो ग्रेवेग भी सब स्वस्थान में ही है, क्योंकि मध्य लोक में भी विहार नहीं करते। ऐसा लेंगे तो हम तो देखते अष्टानिका में जाते हैं, कल्याणकों में आते हैं, सभी इंद्र आते हैं ना। हाँ, आज से अष्टानिका शुरू है। हाँ, तो अभी सारे पहुंच गए वहां पर, कहाँ? नंदीश्वर द्वीप में, अपने अपने वाहन के साथ, और कैसे घूम घूम कर सभी प्रदक्षिणा देके सभी मंदिरों की वो वंदना करेंगे। हाँ, टर्न बाय टर्न, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर सभी जगह है ना, और वहां भी एक एक में तो 13-13 मंदिर है, तो वो पूरा एक दिन तक वो तो वहीं पर ऐसे सभी की ओर इसे प्रदक्षिणा कर करके वहां नृत्य गीत सब करके पूजा वगैरह करेंगे। फिर दूसरे दिन वो पूर्व वाले सारे दक्षिण में आ जाएंगे, दक्षिण वाले पश्चिम में चले जाएंगे, पश्चिम वाले उत्तर में जाएंगे, उत्तर वाले पूरब में आ जाएंगे। हाँ देखो, हम तो यहीं से करेंगे ना, भाव से। हाँ, विशेषार्थ पढ़ते हैं, विशेषार्थ पूरा करते हैं। इतना तिरियंचों में मानांतिक समुद्घात और उपपाद पद के समय भी, ये तिरियंच इन जनरल लिए मोहिनी की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति संभव है, क्योंकि पंचेंद्रिय मरकर एक इंद्रिय में गया है, उपपाद की अपेक्षा भी उसको तिरियंच ही कहेंगे, इसलिए इसमें उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों का स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण कहकर भी सब लोग कहा है। इनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों का स्पर्शन ओघ के समान सब लोग प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि वहां रहते ही है पूरे लोक में। सब पंचेंद्रिय तिरियंच और सब मनुष्यों में दोनों प्रकार का स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण और सब लोग प्रमाण स्पर्शन इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त, ये सब लोग प्रमाण जो स्पर्शन बताया है ना, वो मारणांतिक की अपेक्षा लगाई थी ना हमने। मात्र पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में ऐसे जीवों के ही उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति संभव है, जो अनुभाग का घात किए बिना इन पर्याय में उत्पन्न हुए हैं, यानी वहां उत्पन्न हुए हैं या उपपाद का समय भी ले सकते हैं, उत्पन्न हो चुके अभी। यतः ऐसे जीवों का स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग से अधिक संभव नहीं है, क्योंकि वो तो पंचेंद्रिय संगी में से आए हैं, यहाँ पर जन्म है, तो जन्मने का ठिकाना भी लोक का असंख्यात भाग है। तो ऐसे जीवों का स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग से अधिक संभव नहीं है, अतः इन दोनों मार्गणाओं में, कौन सी, पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त, उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीवों का स्पर्शन क्षेत्र के समान कहा है। देवों में और उनके अवांतर भेदों में जो उनका अपना स्पर्शन है, वह यहाँ दोनों विभक्तियों की अपेक्षा बन जाता है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है। रुकते, अभी हमारा समय हो गया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक न हो सदा देत हो। मयंक भाई।